मेरे नौजवान साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का नमस्कार। मित्रों, आज 5 अप्रैल 2017 है और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और आप सबके साथ ही मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन नौजवान साथियों का भी, जिन्होंने एकेडमी की अक्टूबर नवंबर में होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन मित्रों के नाम हैं सुनील बिश्नोई, जो जोधपुर राजस्थान से हैं, द्वारका प्रसाद सुवालका, आप भीलवाड़ा राजस्थान से हैं, जीवन सिंह त्यागी, आप संभल उत्तर प्रदेश से हैं, अंजू रानी, आप कैथल हरियाणा से हैं, राहुल कुमार, आप मधुबनी बिहार से हैं, निशांत श्रीगंगानगर राजस्थान से हैं, नितेश सहारन, आप भी श्रीगंगानगर राजस्थान से हैं, मयूर कुमार कोलकाता पश्चिम बंगाल से हैं और प्रतीक पाठक रीवा मध्य प्रदेश से हैं। तो सुनील, द्वारका, जीवन, अंजू, राहुल, निशांत, नितेश, मयूर और प्रतीक, आप सभी साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और मित्रों, आप सबके स्वागत के बाद अब मैं बधाई देना चाहूंगा आप सबकी ओर से, एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से, मैडम प्रीति अग्रवाल की ओर से और अपनी ओर से भी, हमारे सिक्स बैच की स्टूडेंट प्रीति ध्रुवे उइके को, जो बैतूल से हैं और जिन्होंने अभी मध्य प्रदेश पीएससी परीक्षा में के प्री एग्जाम को क्वालिफाई किया है। तो प्रीति, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई और मुख्य परीक्षा में भी आप सफल हों और अंततः पूरी सफलता प्राप्त हो, इसके लिए हम सबकी बहुत बहुत शुभकामनाएं और ईश्वर से प्रार्थनाएं भी। दोस्तों, अब मैं आता हूं आज के न्यूज एनालिसिस पर, जिसकी शुरुआत हम लोग करेंगे आकाशवाणी के समाचार से। एक बात मैं कहना चाहूंगा फ्रेंड्स की, अगर मैं आकाशवाणी समाचार से कहता हूं तो आप ये मत समझिएगा कि मैं दूरदर्शन के समाचार को लेकर नहीं चल रहा हूं। आपने महसूस किया होगा कि बहुत से समाचार तो एक ही जैसे होते हैं, दूरदर्शन का प्रेजेंटेशन थोड़ा सा अलग हो जाता है ना, उसमें विजुअल्स होते हैं, उसमें थोड़ी सी ज्यादा से डिटेलिंग होती है, कुछ के बारे में लिखित रूप में एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो जाती हैं, कहीं किसी न्यूज के साथ में एक्सपर्ट के कमेंट्स हो जाते हैं, लेकिन ज्यादातर जो घटनाएं होती हैं, जो समाचार होते हैं वो क्योंकि एक से होते हैं, तो इसलिए मैं अगर कभी आकाशवाणी समाचार का नाम लेता हूं तो आप ये मत समझिएगा कि मैं दूरदर्शन को किनारे कर रहा हूं। मुझे जो बात आप तक पहुंचानी थी कि आपको दूरदर्शन समाचार भी देखने चाहिए और क्यों देखने चाहिए, वो मैं आप तक पहुंचा चुका हूं। अब ये आपकी अपनी सुविधा और जरूरत पर निर्भर करता है कि आप उसे कितना फॉलो करते हैं, लेकिन अंततः मैं तो यही चाहूंगा कि आप उसके लिए भी वक्त निकालें। तो मित्रों, एक दो बहुत इम्पॉर्टेंट खबरें हैं और उसमें जो सबसे बड़ी खबर है वह है उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा अपने यहां के किसानों के कर्ज माफ किया जाना। इसको लेकर के मैं थोड़ी सी आपसे थोड़ी सी डिटेल में बात करूंगा, मैं उस पर बाद में आऊंगा। जो दूसरी खबर है दोस्तों, वो आपने देखा कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यूएनओ में जो राजदूत हैं, उन्होंने ये कहा कि भारत और पाकिस्तान की समस्या को सुलझाने के लिए अमेरिका कोशिश कर सकता है। ये खबर आप लोगों ने सुनी, जिसे भारत ने आउटराइट रिजेक्ट कर दिया। मैं यहां आपको दो बातें स्पेशली बताना चाहूंगा कि भारत ने ऐसा क्यों किया। देखिए, पहली बात तो है कि भारत और पाकिस्तान का जो मामला है ये आपसी मामला है और जो शिमला समझौता हुआ है श्रीमती इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के बीच में उस समय बांग्लादेश के युद्ध के बाद, उसमें साफ साफ ये लिखा हुआ है कि भारत और पाकिस्तान आपसी मामलों को आपस में ही सुलझाएंगे, उसमें किसी भी मध्यस्थ की या तीसरी पार्टी के हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं करेंगे। तो बट नेचुरली कि भारत अपने उस मुद्दे को लेकर चलेगा, तो भारत कभी भी इस बात को स्वीकार नहीं करेगा कि कोई तीसरा देश आकर के सुलझाए। भारत का बहुत स्पष्ट रूप से कहना है कि हिंसा को आप रोकिए, आतंकवादी गतिविधियों को रोकिए, हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। तो ये भारत का स्टैंड है। पाकिस्तान के साथ जो भारत का दूसरा स्टैंड है, जो आपको अपने दिमाग में हमेशा रखना चाहिए, और वो ये है कि जो कश्मीर है, वो भारत का अभिन्न अंग है। यहां तक कि जो ऑक्युपाइड पाकिस्तान ऑक्युपाइड जो कश्मीर है उस पर भी भारत अपना दावा बनाए रखेगा, वह भी भारत का हिस्सा है लेकिन वो पाकिस्तान के द्वारा अधिकृत है। ये दो ऐसे पॉइंट्स हैं जहां भारत जो भारत और पाकिस्तान के संबंधों के बारे में भारत का हमेशा एक स्थायी स्टैंड रहा है और रहेगा, इस पर आपका फोकस होना चाहिए। तीसरी जो खबर थी फ्रेंड्स वो दलाई लामा के अरुणाचल प्रदेश की यात्रा को लेकर थी जिस पर चीन ने अपनी आपत्ति जताई है। आपको शायद ध्यान हो कि लगभग 10 दिन पहले मैंने दैनिक हिंदुस्तान का एक छोटा सा कमेंट आपको प्रोवाइड किया था, बहुत ही खूबसूरत कमेंट था। मैंने उस दिन के स्पेशल ऑडियो में मेंशन भी किया था कि आप उसको जरूर देखें, जिसमें यह बता रखा था कि आखिर में दलाई लामा से चीन इतना घबराता क्यों है। भाई दलाई लामा एक आध्यात्मिक पुरुष हैं, वो कोई चीन के विरोध में नहीं है, उनके पास कोई सेना नहीं है, तो दलाई लामा से चीन इतना परेशान क्यों है, उसको लेकर के बहुत ही खूबसूरत तरीके से वो छोटा सा टुकड़ा लिखा हुआ था। वो टुकड़ा भी बिल्कुल उसी अंदाज से था जिस अंदाज से इससे उससे कुछ दिनों पहले, शायद 5-1 दिन पहले या 7 दिन हो सकता है, मालदीव पर मैंने आपको एक छोटा सा टुकड़ा प्रोवाइड किया था। मित्रों ये जो कुछ कुछ ऐसे कमेंट होते हैं कि वो होते तो छोटे हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उसमें ढेर सारी बातों को समा लिया जाता है और चीजों को बहुत अच्छे तरीके से स्पष्ट किया जाता है। तो मैं चाहूंगा कि आप लोगों में से यदि किसी ने उसे डाउनलोड करके अपने पास रखा हो या कुछ पॉइंट्स नोट किए हो तो उसे यहां फिर से देख लें और तब आपको ये जो दलाई लामा वाला जो मामला है ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखिए तिब्बत का जो अंश है, तिब्बत भारत कभी भी नहीं कहता है कि साहब तिब्बत पाक चीन का हिस्सा नहीं है, भारत ये नहीं कहता है। वो दलाई लामा को एक आध्यात्मिक पुरुष भारत मानता है और भारत में उनको हिमाचल प्रदेश में उनको शरण दी हुई आप कह लीजिए, वो एक पुराना मामला है। लेकिन वो भारत इस बारे में एक बिल्कुल अलग दृष्टिकोण रखता है। दूसरा ये है कि जो चीन है वो अरुणाचल प्रदेश पे आप देखते हैं कि बार बार उस पर ऑक्युपाई करने की कोशिश करता है, वहां कुछ और उस तरह से नहीं, कोई अटैक करके कोशिश करने की नहीं करता लेकिन वहां के कुछ हिस्सों पर अपना अधिकार जमाता है, कभी कभी उसकी सैन्य गतिविधियां भी शुरू हो जाती हैं जिसका भारत लगातार विरोध करता रहा है। तो मित्रों इसलिए बट नेचुरल है कि अगर दलाई लामा भारत में है और भारत के ही राष्ट्र के एक स्टेट अरुणाचल प्रदेश में जा रहे हैं तो चीन को इसमें क्या ऐतराज होना चाहिए, और अगर चीन को ऐतराज हो रहा है इसका मतलब है कि वो हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है जिसे कोई भी सॉवरेन कंट्री स्वीकार नहीं कर सकता। तो ये भारत और चीन के साथ जो हमारे संबंध है उसका एक बहुत ही क्लियर कट और एक स्थायी प्वाइंट है जो आपके दिमाग में बिल्कुल बस जाना चाहिए, मतलब इस पर कहीं कोई समझौता नहीं है। दोस्तों इसके बाद जो दूसरी खबरें थी उसमें किशोरी अमोनकर जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायिका थी उनके निधन की खबर थी। क्योंकि कला संस्कृति आप में है तो थोड़ा सा आप उनके बारे में जरूर देख लें। मैं आप सबकी तरफ से एकेडमी की पूरी टीम की ओर से, अपनी पत्नी प्रीति अग्रवाल की ओर से और अपनी ओर से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, क्योंकि वो महान गायिका तो थी ही, साथ ही मुझे उन्हें रूबरू सुनने का मौका मिला है। बहुत ही उनको अगर आप देखते तो एक बहुत ही भव्य जो व्यक्तित्व तो सामने, अगर वो बैठ करके गा रही हैं, उनका मुंह खुला हुआ है और हाथ आगे की ओर है तो बहुत ही एक भव्य आकृति, बहुत ही प्रभावशाली व्यक्तित्व तो उनका उभरता था, जैसे कि वो किसी बहुत ही बड़े परिवार से हों, अभिजात्य परिवार से हों, मतलब व्यक्तित्व तो उनका बहुत भव्य था। तो इसके बारे में थोड़ा सा आप देख लीजिएगा मित्रों। अब मैं आता हूं जो सबसे इम्पोर्टेंट खबर है, उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा किसानों के ऋण माफ किए जाने को लेकर। दोस्तों अब कितने किसानों को माफ किया गया उससे क्या होगा उस पर मैं नहीं जा रहा हूं, मैं आपको सिविल सर्विस की तैयारी का एक पैटर्न बता रहा हूं। देखिए फ्रेंड्स आपने न्यूज में सुना ये जो माफ किए गए हैं ऋण ये लघु एवं सीमांत किसानों के किए गए हैं। तो मेरा सबसे पहला प्रश्न आपसे है कि क्या आप जानते हैं कि लघु किसान कौन होता है और सीमांत किसान कौन होता है? सामान्य रूप से आपके दिमाग में ये बात आएगी कि वो किसान जो गरीब हैं, ये डेफिनेशन आती है, लेकिन याद रखिए कि यह लघु और सीमांत किसान की परिभाषा नहीं है। हमारे यहां जो किसान की परिभाषा है वो सीधे सीधे इस बात से जुड़ी हुई है कि उसके पास कितनी जमीन है, बस सीधे सीधे इस बात से जुड़ी हुई इसकी डेफिनेशन है। तो एक सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के दिमाग में ये डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। और होता यह है फ्रेंड्स कि जब ऐसी कोई भी खबर आती है तो फिर हमें एक अवसर मिलता है कि हम इसको लेकर के थोड़ी आगे की भी तैयारी करें। ठीक है, ये यूपी सरकार के द्वारा एक उन्होंने जो चुनाव में वायदे किए थे उसकी दिशा में उठाया गया एक कदम है और उन्होंने ऋण माफ कर दिए गए हैं। आंकड़े बहुत हैं, 36,000 करोड़ रुपए माफ किए गए हैं, 80 लाख 2 लाख किसानों को लाभ होगा। ये आंकड़े आपके काम के नहीं है, ये आंकड़े जिनके भी काम के होंगे होंगे, बट नेचुरल की न्यूज में तो आना ही है, लेकिन आपके लिए जो काम की न्यूज है वो इस रूप में होगी कि आप उसको आधार बनाकर कुछ और आगे की तैयारी शुरू करें या अपने को रिवाइज कर लें, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें ही सिविल सर्विस में आपकी सबसे बड़ी सहायता करेंगी। लघु किसान, सीमांत किसान, इसकी डेफिनेशन आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। और हमारे देश का जो फिर फार्मर है उसका सिनेरियो क्या है? तो दोस्तों, जो सीमांत किसान है, देखिए सबसे जो गरीब शब्द हटा दीजिए हालांकि, लेकिन चलिए मैं यूज कर ले रहा हूं, क्योंकि सीमांत किसान वह है जिसके पास 1 हेक्टेयर से कम जमीन, 1 हेक्टेयर या उससे कम, अधिकतम 1 हेक्टेयर। 1 हेक्टेयर का मतलब है 2.5 एकड़। 2.5 एकड़ से जिसके पास कम उतनी जमीन है वह सीमांत किसान है। और फिर लघु किसान कौन है? जिसके पास 1 हेक्टेयर से अधिक लेकिन 2.5 से कम, 2.5 एकड़ से अधिक और इसके बाद 2.5 गुना कर दीजिए उससे कम, इस बीच का जो किसान है वो लघु किसान है। ये उसकी डेफिनेशन है। अब आप सोच करके देखिए कि जिस किसान के पास 2.5 एकड़ जमीन होगी वो गरीब ही होगा। दोस्तों, इसके बारे में मैं आपको एक और तथ्य बताना चाहूंगा, जो मैं केवल सिविल सर्विस की तैयारी को ध्यान में रखकर आपसे बात कर रहा हूं मित्रों, और दूसरा कुछ भी नहीं। जब मैं लघु और सीमांत किसान की डेफिनेशन जान लेता हूं तो फिर मुझे जानना चाहिए कि इनका रेशियो क्या है, हमारे यहां कितने सीमांत किसान है, लघु किसान है, क्या है, तब आपको फिर से एक डेटा मिलेगा। और वो मिलेगा कि हमारे यहां जो 67% फार्मर्स हैं, 67% जो किसान हैं वो सीमांत किसान हैं, जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम जमीन है। 67%, सोच करके देखिए, बहुत बड़ी संख्या है। और केवल 1% ऐसे किसान हैं जिनके पास 10 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन है, 25 एकड़ से ज्यादा जमीन है, 1%। यानी कि आप किसानों के सिनेरियो को देखेंगे तो फिर हमारे पास एक डेटा आता है कि 2/3 हमारे पास सीमांत किसान है। तो हैं तो वो किसान, लेकिन उनकी स्थिति क्या है इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। फ्रेंड्स, इसी के साथ ही साथ आप देखिए कि ये किसान कौन है, ये जो 67% किसान है, जो सीमांत किसान है, ये हैं कहां के? आपको इस पर भी थोड़ा सा सोचना चाहिए कि ये उस क्षेत्र के हैं जो गंगा यमुना के दोआब का क्षेत्र है। मतलब जब आप भारत का भौगोलिक विभाजन करते हैं तो आप देखते हैं कि भारत के भौगोलिक विभाजन में जब हम एक हिमालय क्षेत्र को बांट देते हैं, आप इसको ज्योग्राफी से जोड़िए, हिमालय के पूरे एरिया को बांट देते हैं, और दूसरा जो हम विभाजन करते हैं वो गंगा यमुना का मैदान, जहां जलोढ़ मिट्टी है, उपजाऊ भूमि है। ये जो गंगा यमुना का मैदान है ये विश्व के सर्वाधिक उपजाऊ जमीनों में एक आती है, और इसीलिए इतनी नदियां हैं, इसीलिए यहां संस्कृति का सबसे ज्यादा विकास हुआ है, और जनसंख्या की सघनता भी इस एरिया में सबसे ज्यादा है। तो जहां की सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी है वहां के 67% जो फार्मर्स हैं वो सोचे कि सीमांत किसान है। और वैसे भी अगर भारत का एवरेज देखेंगे तो भारत में एवरेज जो लैंड ऑक्यूपेशन है ना, हमारे एक किसान के पास 1.5 हेक्टेयर ही है, ज्यादा नहीं है। तो दोस्तों, अब आपको थोड़ा विचार करने के लिए मटेरियल मिला कि यार जो सबसे उपजाऊ क्षेत्र है उन्हीं के किसान अभी लघु और सीमांत के क्षेत्र में है, तो ये क्या हो रहा है, रीजन क्या है? अब आप उसके रीजन्स की तलाश करें, ये मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूं। दोस्तों इसी के साथ ही एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि जैसे हमारी जनसंख्या की गणना होती है, आपको मालूम है कि हर 10 साल के बाद होती है, लेकिन जो किसानों की गणना होती है वो हर 5 साल के बाद होती है। 5 साल में किसानों की गणना की जाती है। 2010 में इससे पहले हुई थी, 2015 में अभी हुई। जो मैंने अभी आंकड़े आपको दिए हैं ये 2015 के आंकड़े हैं। और याद रखिए कि जब किसानों की गणना होती है ना, तो इसमें केवल ये गणना की जाती है कि किसानों के पास कितनी कितनी जमीन है ना, उनके बहुत डिटेल्स में नहीं जाते कि लैंड होल्डिंग उनकी कितनी है, कि उनके पास कितना जमीन है। अब देखिए कि होता क्या है कि अब जब हम यहां किसान की डेफिनेशन दे रहे हैं तो यहां थोड़ा सा फर्क है, इसको भी समझ लीजिए ताकि आपके एनालिसिस में कोई गड़बड़ी ना हो। हो सकता है कि मेरे पास 1 हेक्टेयर जमीन हो तो मैं सीमांत किसान में आ गया, लेकिन हो सकता है कि मेरे पास 10 भैंस हो, मेरे पास काफी बकरियां हो, मेरे पास मुर्गियां हो। तो ये जो पशुपालन है, मत्स्य पालन है, मछलियों के मेरे पास कुंड हो, ये भी एक है। लेकिन याद रखें कि इसको फिर अगर किसी के पास है भी तो हम किसान की डेफिनेशन में नहीं लेते। मतलब ये जो लैंड है ये सिर्फ लघु किसान और सीमांत किसान, ये सिर्फ लैंड पर बेस्ड है, उनकी आर्थिक स्थिति पर बेस्ड नहीं है, इसको समझ लीजिए। नॉट बेस्ड ऑन देयर इकोनॉमिक कंडीशन। हो सकता है कि किसी के पास बिल्कुल आधा एकड़ जमीन हो, 1 एकड़ जमीन हो, लेकिन वो धनी हो क्योंकि वो पशुपालन में बहुत अच्छा कर रहा है। तो जो डेफिनेशन हमारे यहां जो फार्मर्स की गई है वो केवल लैंड ऑक्यूपेशन को लेकर के की गई, उसके पास वो जमीन कितना होल्ड किए हुए है, कितने जमीन का मालिक है, दैट्स ऑल, उसकी आर्थिक स्थिति का सूचक नहीं है। लेकिन इसके बावजूद हम कह सकते हैं कि भारत में जो लघु और सीमांत किसान की जो डेफिनेशन है वो कहीं ना कहीं उनकी आर्थिक स्थिति को भी व्यक्त करती, अपवाद स्वरूप कहीं कहीं वो चीज अलग हो सकती है। दोस्तों इसी के साथ ही आपने एक और खबर सुनी थी कि जो चेन्नई का जो उच्च न्यायालय है उसने भी जो तमिलनाडु के किसान है जिन वहां 2 साल से लगातार सूखा पड़ रहा है, तो वहां की सरकार से कहा है कि उनके जो कृषि ऋण है उनको माफ किया जाए। तो ये खबर थी दोस्तों। अब न्यूज एनालिसिस में बस इतना ही। दोस्तों अब मैं आता हूं न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स पर। आता क्या हूं, आकर के और तुरंत जाता हूं। न्यूज़पेपर्स की बहुत सी क्लिपिंग्स मैंने प्रोवाइड की हैं, वो आप लोग देख लेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स मैं प्रोवाइड कर रहा हूं दोस्तों, इकोनॉमिक टाइम्स की है जो आरटीआई को लेकर है। इस पर मैं आप लोगों से कल बात करूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लिपिंग्स है, आप लोग थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। एग्जामिनेशन की दृष्टि से क्यों इंपॉर्टेंट है ये मैं कल आप लोगों को बताऊंगा। आज चूंकि वक्त नहीं है और हड़बड़ी में बताना ये कह लीजिए कि मेरी थोड़ी प्रवृत्ति के विरुद्ध है। तो दोस्तों अब मैं ईमेल लिखने वाले अपने सभी दोस्तों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और सच पूछे तो मुझे यह पढ़कर बहुत अच्छा लगा कि सोमवार के डेली ऑडियो लेक्चर में मैंने जो थोड़ा सा परिवर्तन किया था एक ही टॉपिक को लेकर के, मेंटल हेल्थ केयर एक्ट को लेकर के आप लोगों से विस्तार से बातें की थी, उसके बारे में आप लोगों की बहुत अच्छी प्रतिक्रियाएं आई हैं। और सबसे बड़ी बात यह है फ्रेंड्स कि यह सब आप लोगों के लिए किया जा रहा है, और यदि आप लोगों के काम आ रहा है तो फिर मुझे मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है, और एकेडमी इससे बहुत आत्मसंतोष अनुभव करती है। तो उस रूप में आप लोगों की प्रतिक्रियाओं के लिए मैं धन्यवाद दूंगा कि आप लोगों ने तुरंत अपना रिस्पॉन्स दिखाया, और मेरी कोशिश होगी कि मैं उन चीजों को अब एकोमोडेट करूं। एक बात मैं और कहना चाहूंगा फ्रेंड्स कि जो भी आप सब मेल लिखते हैं तो प्लीज उसमें अपनी जगह का नाम और स्टेट का नाम जरूर लिखिए। कुछ दिनों पहले भी मैंने अर्ज किया था, लेकिन मैं अभी भी देख रहा हूं कि बहुत से मेल में स्थान का नाम और स्टेट का नाम मेंशन नहीं किया हुआ होता है। मुझे बेहद खुशी होगी यदि आप ऐसा करेंगे। तो सभी ईमेल लिखने वाले दोस्तों को एक बार फिर से धन्यवाद देता हूं, उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। और इन्हीं में से कुछ मित्रों के नाम हैं, लिस्ट थोड़ी सी लंबी है दोस्तों, लेकिन मैं नाम उनके लेना चाहूंगा। वह है ब्रज किशोर मिश्रा इलाहाबाद से, आनंद रावत, शशांक निगम, चंद्र प्रकाश, भवेश कुमार, वरुण पांडे इलाहाबाद से, आयुष सिंह, निपुण शारदा, अविनाश त्रिपाठी, नफीस अहमद गाजीपुर उत्तर प्रदेश से, पुष्पा भट्ट उत्तराखंड से, विवेक विशाल, हर्षित गुप्ता उन्नाव उत्तर प्रदेश से, शशिकला चौहान, तनुप्रिया मोहाली पंजाब से, राहुल दिल्ली से, अब्दुल कादिर अंसारी मुजफ्फरपुर बिहार से, मोहम्मद अजहर, अंकित वर्मा, प्रतिमा साकेत, रविंद्र कुमावत, जयप्रकाश कुमार, मनोज धाकड़, अमर मंडोल कल्याणी वेस्ट बंगाल से, अरुण कुमार, अरविंद मिश्रा इलाहाबाद से, नीतीश कुमार बेगूसराय बिहार से, धर्मपाल सिंह पुलोरा राजस्थान से, अनुराग विश्वकर्मा अंबेडकर नगर उत्तर प्रदेश से, प्रशांत मवानी राजकोट गुजरात से और नेहा इखे महाराष्ट्र से। आप सबका भी बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों, इसी के साथ ही आज के अब इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करना चाहूंगा। नमस्कार।